नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज भी स्टूडियो में डॉक्टर सचिन हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नया सीक्रेट, नया मार्गदर्शन उनसे प्राप्त करेंगे। तो आपका स्वागत है, ओम शांति, नमस्ते।
ओम शांति।
हम देखते हैं सचिन भाई की, जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में किसी न किसी रूप में परिस्थितियां आती हैं, और हर बार लोगों को यही लगता है, अधिकतर लोगों का समझ ये है कि मैंने सबके साथ बहुत अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है।
ये सवाल मुझे भी बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैंने बचपन से आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, या हमेशा ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, जब मैंने किसी को दुख नहीं दिया तो मुझे दुख क्यों मिल रहा है। और इसका जवाब कर्मों का सिद्धांत बताया है, उसमें हमको इसका जवाब मिलता है। मुझे दो लाइन जो मैं हमेशा याद रखता हूँ अपने लिए भी, और मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं उनको भी मैं सुनाता हूँ, कि जब आपके जीवन में अच्छा हो रहा है तब ये समझना चाहिए हमारे अच्छे कर्मों का रिटर्न हमको मिल रहा है, और जब अच्छा नहीं हो रहा है तब ये समझना चाहिए कि अच्छा कर्म करने का समय आ चुका है।
लेकिन जिस समय हम वो हमारे सामने वो स्थिति आती है, उस समय ये समझना बहुत मुश्किल होता है, उसमें ट्रैप रहते हैं हम बहुत।
एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, उस समय अच्छे कर्म करने के लिए अच्छे विचारों को जन्म देना कठिन होता है। आई एग्री। इसी के लिए हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी माना एक इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है, जब बीमारी आए तब आप इस्तेमाल करो, ये प्रिवेंशन में भी है। तो पहले से ही हमारा इतना तैयारी होना चाहिए, हमारा मनन चिंतन होना चाहिए, या हमारा अभ्यास होना चाहिए कि जब ऐसी परिस्थिति आए तो क्या विचार हम करें, ठीक है ना। ये बात तो बिल्कुल पक्की है जो आपने पूछा कि बिना कर्म का उसका फल नहीं होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर धुआं है माना आग होनी चाहिए, बगैर आग के धुआं हो नहीं सकता है।
सही है,
ठीक है ना। सब धुआं आ रहा है माना परिस्थिति आ रही है किसी न किसी रूप, इसका मतलब आग है, ठीक है ना। तो मुझे दो बात करनी है। एक, उस परिस्थिति के वक्त मैं अपनी स्थिरता को बनाए रखो, क्योंकि मेजॉरिटी जैसे आपने कहा ना, उस समय अपना बैलेंस खो देते हैं, माइंड इंटेलेक्ट एंड संस्कार, माना अपने विचार बोल और कर्मों में जो बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, वो उस समय चला जाता है क्योंकि परिस्थिति आपके ऊपर प्रभाव डालती है। ऐसा होता है कि कोई भी परिस्थिति आती है तो या तो वो परिस्थिति आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आप उस परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको हमेशा स्पिरिचुअलिटी में या राजयोग में ये सिखाया जाता है कि योगी जो व्यक्ति होता है वो सदैव जागरूक रहता है अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति। आने वाला होता है वो प्रभाव हल्का हो जाता है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, खास करके जब हम आईसीयू में काम करते हैं, इमरजेंसी में। तो आईसीयू में क्या होता है, एक हार्ट अटैक का पेशेंट, कोई पॉइजनिंग का पेशेंट, कोई क्या, तो एक कंटिन्यूस एक इमरजेंसी का स्टेट होता है। लौकिक में जो आप सवाल पूछ रहे हो, परिस्थिति आ सकती है पर वो कंटिन्यूस नहीं रहती है। पर जो क्रिटिकल केयर वाले डॉक्टर रहते हैं या कई ऐसी सिचुएशंस है जैसे पुलिस है, उनको कंटिन्यूस वो प्रेशर रहता है। तो उस समय इफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हम इनको मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं प्रेशर कुकर जॉब। माना आप हमेशा प्रेशर कुकर में है, पड़े हुए हैं, तो उस समय इफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि इफेक्ट आता है। अगर हम स्वयं को आत्मा समझे या स्वयं को एक पॉजिटिव ऊर्जा समझकर अपने बुद्धि और मन को उसमें स्थित करके, फिर आप उसको गॉड, अल्लाह, ईश्वर जो भी कहो, हम ब्रह्मा कुमारी में उसको शिव बाबा कहते हैं, तो परमात्मा से जब हमारा कनेक्शन रहता है तो वो जो इफेक्ट आने वाला होता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसको हम इस तरह से कहते हैं कि तीन लकीर हम बताते हैं, वो लकीर हमको परमात्मा ने बताया कि एक पत्थर की लकीर होती है जो परमानेंट है, दूसरा होता है रेत की लकीर। जब तक दूसरी हवा या पानी नहीं आए वो रेत की लकीर नहीं बुझेगी। पत्थर की लकीर परमानेंट, रेत की लकीर परमानेंट नहीं पर लंबे समय तक रहते हैं। सबसे कम लकीर जो रहती है उसको परमात्मा ने हमको बताया कि वो है पानी की लकीर। इम्प्रेशन तीनों में आ रहा है ना, लेकिन जो पत्थर की लकीर रहती है वो लंबे समय तक रहती है या आजीवन रहती है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो हम जिंदगी भर याद रखते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कैरी फॉरवर्ड भी हो जाती है, ठीक है ना।
इसी को हम कर्मों की इंटेंसिटी कहेंगे। मतलब जो कहते हैं कि कर्मों की गुह्य गति, ये शब्द बहुत यूज किया जाता है। तो कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो जिसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है।
इसका जवाब स्पिरिचुअलिटी ने इस तरह से दिया है कि कई बार हम देखते हैं कि मुझे भी ये सवाल पूछा जाता है कि वो लोग पूछते हैं खास करके कि जो लोग आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं रखते या मानते नहीं हैं, और उसका जवाब मेरे हिसाब से आध्यात्मिकता के अलावा कोई नहीं दे सकता। मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि जैसे मेरा पीडियाट्रिक वार्ड में पोस्टिंग था, मतलब मैं बच्चों के वार्ड में, तो मुझे अभी भी याद है कि जब डिलीवरी होती थी, बच्चा पैदा होने वाला होता, वो रोना चाहिए ताकि उसका सांस लेना चालू हो सके। कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, एक तो उनका वजन बहुत कम है, माने 1 किलो के नीचे, इनको हम लो बर्थ वेट कहते हैं, LBW, माने जन्मते ही वजन कम है, उसका बचने का चांसेस कम होता है। या फिर उनको देखते जन्म से ही बहुत सारे उनके अंदर व्यंग होते, कई बच्चों की आंखें नहीं होती है। ये तो मुझे सवाल पूछा जाता था कि ये बच्चे ने अभी तक तो ये बाहर भी नहीं आया, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है। ऐसे समय पर आध्यात्मिकता कहते कि इट इज कैरी फॉरवर्ड, मैंने पीछे का वो लेके आ रहा है। तो यहाँ पे कर्मों का सिद्धांत हम इस्तेमाल करते हैं। इस जन्म में जैसे अभी हम बड़े हो गए तो हमको पता है कई बार क्या होता है कि हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जानते हुए या नहीं जानते हुए, हमारे द्वारा ऐसी एनर्जी रिलीज हो रही किसी के प्रति। मैं ऐसे बहुत लोगों को आजकल मिलता हूँ कि उनके अंदर से कंटिन्यूस वो निगेटिव वाइब्स निकल रहे किसी के प्रति, अभी वो चाहते नहीं फिर भी निकल जाता है, ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो गुस्सा है या बदला लेने की भावना है। तो वो कहीं ना कहीं जाके वो वापिस आएंगे। लाइफ इज अ बुमरैंग, माना जो आप दे रहे हैं आपके पास आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे, उससे बचना मुश्किल है। अगर ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा है, आप जो कह रहे हैं, तो एनर्जी होती है वो 3-4 रूप से आते हैं। एक लोगों के रूप में आती है, एक प्रकृति से आती है, और एक ऐसे कुछ वाइब्रेशंस आते हैं जो हमको पता नहीं चलता। तो वो आ रहे मतलब कहाँ, कभी तो गए हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप कहो कि नहीं गए, पहली बार आ रहे, तो भी दो चीजें हैं। एक, आप उस निगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाना, जो मैंने पीछे भी कहा कि ये निगेटिव एनर्जी आना कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है। माना ये डिसाइड करना कठिन है कि पीछे का आ रहा है या नया आ रहा है।
हाँ, जैसे आपने बताया कि हमें ये पहचानना होगा ये एनर्जी हमने ही भेजी हुई है, लाइफ इज अ बूमरैंग, वो हमारे पास लौट कर आ रही है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो क्या राजयोग के द्वारा ये एक्सेप्टेंस पावर हमारी बढ़ेगी?
जो भी कारण हो जिसके वजह से वो निगेटिव ऊर्जा लोगों के रूप में या परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आती है, तो हमको राजयोग ये सिखाता है कि कारण कुछ भी हो हम निवारण के ऊपर फोकस करें। जैसे मैनेजमेंट में हम बताते हैं कि प्रॉब्लम कॉन्शियस के बजाय सॉल्यूशन कॉन्शियस हो जाए। कई बार क्या होता है मैनेजमेंट में भी हम ना प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत, क्यों कहाँ से आ रहा है, कहाँ क्यों आ रहा है, उसके बजाय डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें।
कारण को नहीं पहचानेंगे हम निवारण कैसे करेंगे?
एग्जैक्टली, सब चीजों में ये लागू नहीं पड़ता है। कई बार ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, माने एक साथ चलनी चाहिए कि जब तक मेरे को कारण नहीं पता चल रहा है कम से कम मैं रिलीफ तो दूं ना, नहीं तो तब तक तकलीफ बढ़ती जाती है। तो राजयोग हमको ये बताता है कि उसकी जड़ में जरूर जाओ, और समटाइम्स आपको ऐसे होगा कि कारण पता नहीं चलेगा। उस समय हमारे हाथ में ये है कि लॉ ऑफ कर्मा या कर्म के सिद्धांत को पॉजिटिवली यूज करना है। तो पहले उस निगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाना, दूसरा मेरे द्वारा कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एनर्जी निकलती रहे। करना भी कठिन है लेकिन थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज है जो अंधेरे से बचा सकती है, वो प्रकाश है।
लेकिन कई बार हम ये स्ट्रगल करते करते इतने थक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का भी अनुभव रहा है कि ठीक है, ये मेरे ही कर्मों का कुछ जो भी होगा वो फल मैं भोग रही हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद उसको खत्म करने के लिए हम क्या ऐसे इजी स्टेप्स उठाए, एक तो वो स्टेप भी मैं जानना चाहूंगी, और दूसरा है कि जब बहुत स्ट्रगल होता है तो थकान महसूस होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे मदद करें?
ऐसे समय पर मनुष्य गिव अप कर देता है, माना वो थक जाता है समस्याओं से लड़ते समय, और कई बार उसको ऐसे लगता है कि बस अभी मेरे से नहीं होता है। ऐसे अवस्था में वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, हमने ये देखा है। तो उस समय मैंने देखा कि उनको एक जिंदगी में आशा ही नहीं रहती कि कुछ अच्छा हो सकता है, ऐसे भी परिस्थितियां कई बार आती है। तो हम उनको यही बताना चाहेंगे कि जैसे हम मैनेजमेंट में कहते हैं कि बिना चाबी के ताला बनता नहीं है, ताला है माना चाबी होना चाहिए, ठीक है, या बिना सॉल्यूशन के कोई भी परिस्थिति होती नहीं है, सिर्फ वो टाइम का प्रश्न होता है कि कितना टाइम लेगी वो परिस्थिति। और कई बार क्या होता है, हम सॉल्यूशन के एकदम नजदीक पहुंचे हुए रहते हैं, जब उसके खत्म होने का समय आ चुका होता है उसके थोड़ा पहले ही हम हार मान लेते हैं।
जैसे आपने कहा कि वो पेशेंस चाहिए, हमको टाइम का नहीं मालूम है कि वो कब खत्म होगा, पर कई मेरे जानकार में ऐसे व्यक्ति है कि जिनका बहुत लंबे समय से स्ट्रगल है, इतना लंबा समय का जो स्ट्रगल है, तो कोई व्यक्ति कैसे पेशेंस रखेगा, उसका एक लाइफ टाइम मतलब नियरली हाफ लाइफ टाइम उसका खत्म हो चुका होता है।
ऑप्शन क्या है आपके पास दूसरा? एक ये है, पर दिस इज नॉट द एंड। एक तरफ परिस्थिति आ रही है तो वो परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो रही है, तो मेरे पास और एक ऑप्शन है कि मेरे पास अभी ये निगेटिव एनर्जी बढ़ते जा रही है, ठीक है ना, मैं उस निगेटिव एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रही हूं, रुक नहीं रही है, जैसे आप कह रहे हैं उसका इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है, तो मेरी फीलिंग्स है वो भी उतनी पॉजिटिव नहीं है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, जैसे आपने कहा मेरी शक्ति अभी खत्म हो चुकी है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे समय पर जब मुझे लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, तो ऐसे समय पर आपको मदद लेनी चाहिए किसी की। कई लोग क्या होते हैं, अपने में ही पड़े रहते हैं, वो किसी की मदद भी नहीं लेते। ऐसे समय पर जब आपकी शक्ति नहीं काम कर रही तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए जो आपको बाहर से लेनी चाहिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना, तो ये प्रोग्राम के द्वारा आपको अच्छे विचार मिल रहे हैं, आपको एक आशा की किरण मिल रही है कि नहीं, जैसा मैं दुखी है और भी कई सारे दुखी लोग हैं, पर उन्होंने हिम्मत रख के परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त किया है। तो ऐसी आशा की किरण हमको हमेशा किसी न किसी से लेनी चाहिए, ब्रह्मा कुमारी बहने या सेंटर जिनके संपर्क में आप जाइए, या ऐसे प्रोग्राम अटेंड करने से क्या होता है कि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी का एहसास आपको होने लगता है। हालांकि पहले जो परिस्थिति आपके जीवन में आए उसका कितना प्रभाव है, कितने समय का, और आपको एनर्जी कितनी मिल रही है, उस अनुसार आप उस परिस्थिति से बाहर आएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन एवरी डिसीज कि ये बीमारी कितनी पुरानी है, कितने सालों से है, मेरे ऊपर कितना इसका प्रभाव आया, और ये एनर्जी मैं कितना समय से ले रही हूं। तो जैसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी और टेम्पररी आपको बाहर से पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी, ये महसूस करने लगेंगे कि पहले मेरे को ज्यादा तकलीफ होती थी, अभी तकलीफ कम होने लगी है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो तकलीफ कम होते होते खत्म हो जाएगी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। और यही ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसमें आपको धीरज बनाए रखना चाहिए, और वो धीरज एक होता है कि अनुभव के आधार पर, एक होता है कुछ शब्द, कुछ आत्माओं से कुछ ऐसे शब्द हमको मिलते हैं या परमात्मा की शक्ति हमारे पास आने लगती है जब हम सेंटर्स पर जाते हैं, तो धीरे धीरे हम इसमें से निकल सकते हैं। अभी इसमें कितना टाइम लगेगा ये हम नहीं बता सकते। हमने ऐसे पेशेंट्स देखे जो बहुत क्रोनिक डिप्रेशन में थे, बहुत सालों से दवाई ले रहे थे, या बहुत दिनों से उनको नींद नहीं आ रही थी, नींद की समस्या थी, या संबंधों में कड़वाहट थी, हमने देखा कि एक हफ्ते के अंदर चेंज देखा है, और फिर वो बिल्डअप होते होते धीरे धीरे उनकी दवाइयां कम हो गए। कुछ लोगों को हमने देखा 15 दिन से एक महीना लगता है। यही हम कहना चाहेंगे कि आप पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के साथ में रहो, तो धीरे धीरे उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर की निगेटिव एनर्जी को रिप्लेस करने लगेंगे। और इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, लेकिन रिजल्ट हमेशा आता है।
सही है, मतलब आपका कहना है कि हमको पेशेंस या टाइम बाउंडिंग नहीं होना चाहिए कि इतने टाइम में खत्म हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि जब लोग दूसरों के अनुभव सुनते हैं कि इनका एक हफ्ते में खत्म हुआ, इनका एक महीने में खत्म हुआ, तो उनका यही लक्ष्य रहता है कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं ये इतने समय में मेरा पूरा होना चाहिए। तो वो जब नहीं होता है तो वो छोड़ देते हैं। फिर वो कहते मैंने यहाँ गई, मैंने ये किया, मैंने ये इस हीलर के पास गई, सब कुछ किया पर कोई चेंजेस नहीं है, तो उनके लिए आप लास्ट वर्ड क्या कहेंगे?
मैं एडिक्शन के फील्ड में बहुत काम करता हूँ, तो मेरे पास काफी लोग आते हैं पूरे भारत से, तो मैंने देखा कि वो एक अपेक्षा लेके आते हैं कि उन्होंने सुना रहता है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने के बाद फलाने भाई का एक हफ्ते में बहुत पुराना नशा छूट गया। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे समय पर वो थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत समय से उनकी आश थी कि यहाँ पर भी छूट जाए और ये भगवान का घर है, तो अपेक्षा लेके आते हैं। वो देखते हैं कि ये भाई इतना पुराना था, इसका 7 दिन में छूट गया, इसका 2 दिन में छूट गया, इसका 10 दिन में छूट गया, और वो खुद भी आते हैं और उनका 15 दिन हो गया अभी तक वो नहीं छूट रहा है, तो थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते। तब हम उनको यही बताते हैं कि हरेक की बीमारी अलग है, हरेक का बैकग्राउंड अलग है, हरेक की विल पावर अलग होती है। एक्टिवेट नहीं होती तब तक आपको पेशेंस रखना चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि 3 महीना, 3 महीना एक एवरेज टाइम है जिसमें हम, खास करके एडिक्शन के बारे में हमने देखा कि अगर आप रोज आ रहे हैं तो आपका नशा नहीं छूटे या आपको रिलीफ नहीं मिले, ये नहीं हो सकता, लेकिन नियमित आना पड़ेगा
हर चीज की विधि।
हाँ, तो हर चीज का टाइम रहता है, हर एक की बैकग्राउंड अलग होते है, हर एक की धरनी अलग होती है, हर व्यक्ति का बचपन अलग होता है, उसका अपब्रिंगिंग माना उसके माँ बाप या जिस परिस्थिति में वो पला बड़ा हुआ, उसके दोस्त, उसका ऑफिस का वायुमंडल, वो सब अलग होता है। तो हम कभी भी इस तरह से तुलना नहीं करें कि उसका 7 दिन में हुआ, मेरा अभी तक 10 दिन 15 दिन में क्यों नहीं हुआ। होगा जरूर, सिर्फ आपको लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए, लगातार मार्गदर्शन लेना चाहिए और योग्य व्यक्ति के साथ आप लगातार बने रहे और मेडिटेशन करते रहे। तो मेरा ऐसा मानना है आज तक का कि मेजॉरिटी लोगों में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। जिन लोगों में हमको रिजल्ट नहीं मिलता उनका एक ही मैंने देखा, एक लॉस टू फॉलोअप, वो फॉलोअप नहीं करते। हम जो गाइडलाइन बताते हैं उनको ऐसा करो वैसा करो, वो करते नहीं है, तभी ऐसा होता है,
विधि सही नहीं करते,
विधि से नहीं करते है। जैसे उनको बताया वैसे किया जाए कि डेफिनेटली रिजल्ट आते।
बहुत ही सुंदर रीति से आज आपने हमें कर्मों की गहन गति के बारे में बताया है, लेकिन मैं मेडिटेशन के लिए फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेडिटेशन से हमें एक गाइडलाइन मिलती है, हमें एक रास्ता मिलता है कि किस तरह से विचार करना चाहिए, तो हम 2 मिनट आप मेडिटेशन आप लेंगे प्लीज।
अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे और सिर से लेके पांव के अंगूठे तक अपना संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। दोनों हाथ पैर, छाती पेट, पीठ की मांसपेशियां, चेहरा, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, हल्का छोड़ देंगे अपने आप को। और ध्यान अपना 2 आंखों के बीच में लेके जाएंगे जहां हम तिलक लगाते हैं और महसूस करेंगे एक सुंदर दिव्य प्रकाश 2 आंखों के बीच चमक रहा है और मैं ये दिव्य प्रकाश हूं, इस शरीर के मालिक हूं, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं, परमात्मा जो कि मेरा पिता है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, उससे शांति का प्रकाश मेरी ओर आ रहा है, ज्ञान की किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, मेरी समझ शक्ति बढ़ते जा रही है। परमात्मा ने हमें समझ दिया है, ये पूरा विश्व नाटक जिसमें करोड़ों एक्टर्स प्ले कर रहे हैं, ये पूरा विश्व नाटक कर्मों के ऊपर बना हुआ है। जन्म जन्मांतर हमसे जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे कर्म हुए हैं, हमारे द्वारा जो भी ऊर्जा गई है विश्व में लोगों की तरफ और प्रकृति की तरफ, वो हमारे पास वापस आएगी। मुझे इस समझ से ये पता चला है कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा मेरे पास आए, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है,
अगर निगेटिव ऊर्जा परिस्थिति या लोग मेरे जीवन में आ रहे हैं तो उससे दुखी होने के बजाय, उससे प्रभावित होने के बजाय मैं हमेशा ये अटेंशन रखूंगा कि मेरे द्वारा सदैव सकारात्मक ऊर्जा बहती रहे, परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा सदैव मेरे चारों तरफ है, मैं ऊर्जा के लाइट के कार्ब में हूं, मेरे चारों तरफ दिव्य शक्तियां है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस लाइट के कार्ब में प्रवेश नहीं कर पा रही है। परमात्मा की छत्र छाया में मैं सदैव सुरक्षित हूं और मेरे द्वारा निरंतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मैं मास्टर शांति का सागर हूं। ये ऊर्जा मेरे द्वारा निरंतर वातावरण में प्रभावित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। मेरे संबंध संपर्क में आने वाले सभी लोगों की तरफ ये सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बह रही है। मेरे घर वाले, पड़ोसी, ऑफिस वाले, जिन भी लोगों के संपर्क में मैं आता हूँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन सबको ये परमात्मा की शक्ति प्राप्त हो रही है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा बेशांत हो रही है। मुझे हमेशा जिंदगी में अच्छे लोग ही मिलते आ रहे हैं। निगेटिव ऊर्जा वाले लोग भी मेरे से मिलने से प्रसन्न हो रहे हैं। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, मैं उसमें अपना संतुलन बनाए रख सकता हूँ। क्योंकि सर्वशक्तिवान सदैव मेरे साथ है। मैं हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखूंगा, हर परिस्थिति में सकारात्मकता से उसका सामना करूंगा। मेरा विजय निश्चित है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ और लाइट के कार्ब में हूँ और हमेशा इसी कार्ब में बना रहूंगा। ओम शांति, शांति, शांति।
ओम शांति। बहुत ही रिलीफ लग रहा है, बहुत अंदर से सच में एक शांति की फीलिंग आ रही है। आज के पूरे मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
नमस्ते
दोस्तों। कर्मों का जो सीक्रेट है उसके बारे में आज हमने कई चीजों को जाना। डॉक्टर सचिन ने हमें बहुत सुंदर रीति से बताया कि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आने के बावजूद भी हम कैसे पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत कंटिन्यूअस हमारे अंदर से अगर चालू रखेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी कम हो सकती है। कई बार बीमारी लंबी हो सकती है, इसीलिए हमको थोड़ा सा पेशेंस अगर हम रखते हैं तो बीमारी जरूर खत्म होगी। ये सब बातों को लेकर और भी हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।